रुकू नंबर 14 आयत नंबर 113 से 115 टॉपिक है रज़ाए इलाही के लिए काम करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या है जिस पे रोशनी डालते हुए इस सबक में अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ सबक देंगे। आइए देखते हैं। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहू, अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम आप पर ना होता तो इनकी एक जमात ने तो आपको बहकाने का कसद कर ही लिया था। इशारा है उसी गिरोह की तरफ जिन्होंने नबी सल्लम के सामने अपनी बिरादरी के एक शख्स की झूठी हिमायत की। मगर दरअसल ये अपने आप को ही गुमराह करते हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला ने आप पर किताबो हिकमत उतारी है और आपको वो सिखाया है जिसे आप नहीं जानते थे, और अल्लाह ताला का आप पर बहुत भारी फजल है। इनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर नहीं, हाँ भला इसके मशवरे में है जो खैरात का या नेक बात का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म करे। और जो शख्स सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के इरादे से ये काम करे इसे हम यकीनन बहुत बड़ा सवाब देंगे। जो बावजूद राह हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ करे और तमाम मोमिनों की राह को छोड़ कर चले, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसे उधर ही मुतवज्जह कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जह हो या वो खुद मुतवज्जह हुआ, और इसे दोजख में डाल देंगे। वो पहुंचने की बहुत ही बुरी जगह है। क्या पता चला कि कुछ लोग सिर्फ किसी की हिमायत इसलिए करते हैं कि वो हमारी ज़ात और बिरादरी से, आम हालात में तो करते ही हैं लेकिन रिश्ते जोड़ते शादियां ब्याह करते हुए तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारी बिरादरी जैसी कोई भी नहीं। हालांकि आम तौर पे हम अपनी बिरादरी के लोगों पे तनकीद करते हुए दिखते हैं, लेकिन जब रिश्ते जोड़ने की बात आती है तो फिर वही बात रहती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो चीज़ें मेरी उम्मत में भी दौरे जाहिलियत की बाकी रहेंगी उसमें से एक यही है, यानी ज़ात पात और बिरादरी। इस पर कोशिश करनी चाहिए कि हक़ को मेयार बनाए। अपनी बिरादरी सबसे अच्छी है, शर्त यह है कि वो अल्लाह के उस हुक्म पर अमल करे। तो हम सब ने इस रुकू से अपने लिए अमल की बातें क्या ली कि अल्लाह ताला का हम पर फजल है कि अल्लाह ने हमें समझ बूझ दी, लिहाजा हमने हमेशा हर मामले में कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेनी है। फिर इसमें पोशीदा सदका और खैरात करने की भी बात मिली थी, अल्लाह करे हम इस पर भी अमल करें। नए कामों को करने की तलकीन भी करनी चाहिए और लोगों की इसलाह के लिए कभी कभी उनको चुपके चुपके भी समझाना चाहिए। और जितना ज़्यादा कोई इंसान किसी दूसरे की इसलाह की फ़िक्र करेगा अल्लाह सुब्हान तआला उसकी अपनी इसलाह में उसको मददगार करेंगे। आगे है रुकू नंबर 15 आयत 116 से 126, अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम करना यानी सबमिट टू अल्लाह सुब्हान तआला। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, इसे अल्लाह कतन न बख्शेगा कि इसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाए। हाँ शिर्क के अलावा गुनाह जिसके चाहे माफ़ फरमा देता, और अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। ये तो अल्लाह ताला को छोड़कर सिर्फ औरतों को पुकारते हैं, उनके फेमिनिन टाइप के बुतों की तरफ इशारा, मूर्तियों की सूरत में अक्सर बुत बनाते थे। और दरअसल ये सिर्फ सरकश शैतान को पूछते हैं जिसे अल्लाह ने लानत की है और इसने बेड़ा उठाया है कि तेरे बंदों में से मैं मुकर्रर शुदा हिस्सा लेकर रहूँगा। ज़रा सा इस एक आयत को पढ़ते हुए शैतान के बारे में दिल में कुछ ग्रज महसूस कीजिएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया कि हम अपने बच्चों को भी शैतान कह देते हैं, लेकिन शैतान के प्लॉट्स क्या हैं। वला उमन्नियन्नहुम, और इसी तरह से वला उदिल्लन्नहुम, यानी शैतान रास्तों से कैसे भटकाता है। और ये वो आयत है कि जिसको पढ़ने के बाद ख़ास तौर पे शर्त यह कि ये अगर हमें समझ आ रही हो तो फिर कभी भी इंसान शैतान की हर बात पे आंखें बंद करके नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान फिर अक्ल भी नहीं इस्तेमाल करता, और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो दूसरे बहुत सारे लोग करने लग जाते हैं। तो शैतान का ये प्लान, शैतान का ये प्लॉट आपके मेरे लिए, और ख़ास तौर पे फिर कहूँगी कि अपनी यूथ, अपनी बच्चियाँ और अपने बच्चे, उनके दिल में इस चीज़ का यकीन दिला दीजिए कि अगर अल्लाह के नबी और आपके असहाब हमारे बेहतरीन साथी थे, उनको रोल मॉडल बनाना है, तो शैतान बदतरीन हस्ती भी है, क्योंकि वो हर दौर के लोगों के साथ बिल्कुल उसी तरह से चलता है जैसा कि वो उनको देखना चाहता है, यानी साइकेट्रिस्ट है शैतान। बहुत ज़्यादा दूसरों की कह लीजिए कि साइकी को पहचानता है, और उसकी एक एक बात, अभी मैं इसलिए सारी तमहीद दे रही हूँ कि आप इसको पढ़ते सुनते वक्त महसूस कीजिएगा कि शिद्दत के सीगों के साथ है, तशदीद है जिसमें मुबालगा है, ये नहीं कह दिया मैं ये करूँगा, अच्छा मैं देखूँगा अगर मैं ये कर सका तो मैं कर लूँगा, वैसे है तो मुश्किल, तो फिर तो शैतान कभी ना बहका सकता। यानी शैतान की जो आपके मेरे लिए काबिले अमल बात है इसमें क्या है कि कन्विक्शन, जो बात करें जो काम करें उसको फुल कन्विक्शन के साथ करें। उदुल्लाहवान तो मुँह के नू नबिल इजाबा, हदीस में आता है कि दुआ ऐसे मांगो कि तुम्हें उसकी कबूलियत का यकीन हो। तो शैतान को पूरा यकीन था कि मैं आदम की जुर्रियत को बहका लूँगा, इसीलिए उसने इंग्लिश में जिसको आप कह सकते हैं ना कि श्योर शॉट, यकीनन ऐसा ही होगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। अब इन सारी टोन्स को और इन सारी बातों को सुनने के बाद ज़रा सा सुनिए कि शैतान के आपके बारे में ख्यालात क्या हैं, और फिर आप कभी अपने किसी बच्चे को ये नहीं कहेंगे चलो शैतान चलो शरीर, न शैतान कहना चाहिए न शरीर, क्योंकि शर फैलाने वाला और वो शर फैलाने वाला जो मुस्तकिल शर फैलाए उसको शरीर कहते हैं, और शैतान तो हम सभी जानते हैं अंधेरे कुएं में फेंकने वाले को। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं शैतान ने क्या कहा, नोट कीजिएगा आयत 119, वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्न आज़ान अल अनाम वला आमुरन्नहुम फला युगैरुन्न खल्क अल्लाह वमन यत्तखिज़ शैतान वलीयम मिन दूनिल्लाही फकद खसिर खुसरान मुबीना। अब सुनिए इसका तर्जुमा, और इन्हें राह से बहकाता रहूँगा और बिलज़रूर बातिल उम्मीदें दिलाता रहूँगा, और इन्हें सिखाऊँगा कि जानवरों के कान चीर दें, और इनसे कहूँगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। सुनो जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाएगा वो खुले नुकसान में डूबेगा, वो इनसे ज़ुबानी वादे करता रहेगा और सब्ज़ बाग दिखाता रहेगा, मगर याद रखो कि शैतान के जो वादे इनसे हैं वो सरासर फरेबकारियां हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जगह जहन्नुम है जहाँ से इन्हें छुटकारा न मिलेगा। इसके बरक्स और जो लोग ईमान लाएं और भले काम करें हम इन्हें इन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहाँ ये अबदुल आबाद यानी हमेशा रहेंगे फॉर एवर। ये है अल्लाह का वादा जो सरासर सच्चा है, और कौन है जो अपनी बात में अल्लाह से ज़्यादा सच्चा हो। हकीकत हाल तो ना तुम्हारी आरज़ुओं के मुताबिक है क्या कि हम जन्नत में जाएंगे, हर गिरोह कहता था हम जन्नत में जाएंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत ख्वाहिशों से नहीं मिलती, ना बातों से ना दावों से, बल्कि क्या है, हकीकत हाल तो ना तुम्हारी आरज़ू के मुताबिक है ना अहले किताब की उम्मीदों पे मौकूफ़ है। जो बुरा करेगा इसकी सज़ा पाएगा, और किसी को ना पाएगा जो इसकी हिमायत और मदद अल्लाह के पास कर सके। जो ईमान लाने वाला मर्द हो या औरत और वो नेक अमल करे, यकीनन ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और खजूर की गुठली के शिगाफ के बराबर भी इनका हक न मारा जाएगा। दीन के एतबार से इससे अच्छा कौन है जो अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे। दुआ करे कि अल्लाह हमें अपने ताबे कर ले और हो भी वो नेकुकार यानी अच्छे काम करने वाला, साथ ही यकसुई वाले इब्राहिम के दीन की पैरवी कर रहा हो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया है। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को घेरने वाला है। क्या पता चला कि इस एक रुकू में शैतान ने हमें खूब धमकियाँ दी और आज तक वो उस पर काम कर रहे हैं। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने शैतान को क़यामत तक की मोहलत दे दी थी कि जो करना है कर लो, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला को इस बात पर पूरा यकीन था कि मेरे बंदे मेरे मुखलस बंदे तेरे जाल में नहीं आएंगे, यानी ना नमाजी ना रोज़ेदार ना तबलीग करने वाले ना हज उमरा करने वाले, बल्कि आगे हम पढ़ेंगे इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। खुद शैतान ने भी कह दिया था कि अल्लाह तेरे इखलास वाले बंदों पे मेरा जोर नहीं चलेगा, तो आप सहाबे कराम से इस साल ये ज़रूर सीखेगा कि वो मुखलस थे। मुखलस के मुखलस का फ़र्क है, ये सूरह सफ़ात में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये बात नोट कीजिए कि इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा मुकाबला कॉम्पिटिशन जिसको आप कह सकते हैं हिजब इख्तलाफ कौन है, शैतान। और मज़े की बात बताऊँ शैतान के पास कोई ताकत नहीं है, नथिंग, ही कैन डू नथिंग। आपके मेरे पास ज़्यादा ताकत है उससे, वो सिर्फ इतना कर सकता है कि इंसान को लफ्जी वादों का फरेब दे और फर्जी तमन्नाओं में उलझाए, और इस तरह वो लोगों को हक से दूर कर देता है। शैतान की गुमराही की दो खास सूरतें होती हैं, दो तरीक़ों से। नंबर एक, तोहम परस्ती, बंदे के दिल में वहम डालता है उसको सुपरस्टिशियस कादी कर देता है, और दूसरी बात जिसका इस आयत में भी जिक्र हुआ है, अल्लाह की तख्लीक में फ़र्क करना। तो वहम परस्ती क्या है कि किसी चीज़ से ऐसे नतीजे की उम्मीद रख ली जाए जो उसका नतीजा निकलने वाला नहीं। झूठी तमन्नाएँ आरज़ुएँ, खुद साख्ता मफरूज़ है, ये कर लो तो जन्नती, वो कर लो तो जन्नती, और इसकी बुनियाद पर इंसान अमल छोड़ दे। और हकीकत यह है कि अल्लाह के सिवा किसी के पास ये ताकत नहीं है कि वो इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसी बात ला सके। और दूसरा शैतान का तरीका क्या है, लिख के रख लीजिए। आज तो इसकी तफसीर में 2 सफ़े बोलने की और करने की और कहने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ अभी इतनी बात कह देती हूँ कि शैतान का दूसरा तरीका वारदात क्या है कि अल्लाह के बताए हुए नक्शे को बदल दे। और अल्लाह ने इंसान को जिस नक्शे पे पैदा किया ना, वो फितरत है। फितरत अल्लाह अल्लती फतरत नस अलैहा, सूरह शूरा में जाकर पढ़ेंगे कि बंदा फितरतन अपनी तवज्जो को अल्लाह की तरफ लगाए। और फितरत को बदलना यह है कि इंसान की तवज्जो को बदल दे, इंसान के लिए गैर अहम को अहम बना दे और गैर ज़रूरी को ज़रूरी बना दे, या फिर किसी मकसद के हसूल का जो तरीका फितरी है उसको बदल कर खुद साख्ता तरीके अख्तियार किए जाएँ। आज के LGBT पूरी की पूरी इसमें आती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसमें आती है। पौधों में से वो सब हिस्से निकाल दो जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सके, औरत का मर्द बनना, औरत के चेहरे पे कुछ ऐसी तब्दीलियां कि जिससे वो मर्द लगने लगे, औरत का हाल हुलिया मर्दों वाला, औरत का लाइफस्टाइल मर्दों वाला, कमाना मर्द ने था वो औरत कमाने लग गई, बच्चों को औरत ने पालना था वो अब मर्द हिस्सा डालने लगे क्योंकि बीवी भी जॉब पे जाती है, इसलिए एक दिन पैम्पर वो बदलेंगी तो दूसरे दिन बेटी का पैम्पर बाप बदलेगा। आज दुनिया आपको इस तरफ ले रही, ये सब कुछ इस आयत के अंडर आता है। असल बात यह है कि हम इसको अगर समझ जाएं, तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ आए, तो पता क्या चला कि इस रुकू में हमारे लिए अल्लाह की रज़ा को पाने वाले तरीके और ख़ास तौर पर शैतान से बचने के लिए ईमान को पुख्ता कीजिए, नेक आमाल करने हैं और अल्लाह के अहकामात की मुकम्मल इताअत करनी है। याद रखिए, शैतान आपको मुझे पार्शल सबमिशन सिखाता है, और जो पार्शली अल्लाह का हुआ ना, तो मान लीजिए कि हाफ पार्शल जो होगा वो शैतान का ही होगा। इसी तरह अल्लाह के लिए यकसू होना, जो बंदा अल्लाह के लिए फोकस हो जाएगा ना, शैतान उसके ऊपर कभी काबू नहीं पाएगा। इसी को इखलास कहते हैं, इसी को लिल्लाहियत कहते हैं। और इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीक़ों की पैरवी करना और दूसरों पर एहसान करके भूल जाइए। जितना ज़्यादा आप इस पर अमल करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए इसको आसान करेगा। दुआ करते हैं अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को शैतान से बचा दे, नस्लों की नस्लों को, बच्चों के बच्चों को। दुआ आज के दौर में देने वाली है कि अल्लाह आने वाली नस्लों को आने वाले फितनों से बचाना। और आने वाले फितने छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े भेड़िए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो मुँह उठाए हुए हैं। अगर आपने मैंने अपने बच्चों को अभी से शैतान से दुश्मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना किया, तो हो सकता है कि कल वो खुद भी कई ऐसे काम करने में आ जाएं, और अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। आगे है जी रुकू नंबर 16, आयत 127 से 134। भलाई इंसान अपने लिए करता है, यानी मेरा आपके सर पे कोई एहसान नहीं है और आपका भी नहीं है। जो अच्छा करेगा खुद भुगतेगा, जो बुरा करेगा खुद भुगतेगा। कैसे? वयस्तफ्तूनक फिन्निसा, आपसे औरतों के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। आप कह दीजिए कि खुद अल्लाह ताला इनके बारे में हुक्म दे रहा है, और कुरान की वो आयतें जो तुम पर इन यतीम लड़कियों के बारे में पढ़ी जाती हैं और जिन्हें इनका हक के महर तुम नहीं देते और इन्हें अपने निकाह में लाने की रغبत रखते हो, और कमज़ोर बच्चों के बारे में और इस बारे में कि यतीमों की कारगुजारी इंसाफ के साथ करो। तुम जो नेक काम करो, और बिलाशुबा अल्लाह ताला इसे पूरी तरह जानने वाला है। अगर किसी औरत को अपने शोहर की बददिमागी और बेपरवाही का खौफ हो, तो दोनों आपस में जो सुलह कर लें, इसमें किसी पर कोई गुनाह नहीं। सुलह बहुत बेहतर चीज़ है, तमा हर नफ्स में शामिल कर दी गई। अगर तुम अच्छा सलूक करो और परहेजगारी करो, तो तुम जो कुछ कर रहे हो इस पर अल्लाह ताला पूरी तरह खबरदार है। पीछे हमने पढ़ा था बिगड़ी हुई बीवी को कैसे ठीक किया जाए, यहाँ बिगड़े हुए शौहर की बात है। नशूज़ औरत में आ जाए तो उसका तरीका पढ़ा, इसी सूरत में शौहर में अगर कोई बेतनाई देखी जाए, शौहर बीवी भी बना के रखे लेकिन बेवाओं वाली ज़िंदगी करवा दे, तो अल्लाह ने औरत को पूरा हक दिया है। यानी आप देखिए कि जब आप कुरान पढ़ते हैं, आप में आए थे सवाब लेने, आप और मैं आए थे दौरे कुरान करने, हम कहते थे चलो रमज़ान की घड़ी है, कुछ अच्छा काम करें। आपके घरों की इस्लाह है, आपको आपके हकूक़ और आपके फ़राइज़ कुरान सिखाता है, इससे ज़्यादा आपको कोई और नहीं सिखा सकता। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं तुमसे ये तो कभी ना हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अदल करो। गो तुम इसकी कितनी ख्वाहिश और कोशिश कर लो, बहुत सारी तो क्या एक बीवी के हक भी हर मर्द नहीं दे पाता। कहाँ एक से ज़ायद बीवियों की ख्वाहिश, जिसका सूरत के शुरू में तस्करा हुआ। इसलिए बिल्कुल एक ही की तरफ मायल होकर दूसरी को उधर लटकती हुई ना छोड़ो। और अगर तुम इस्लाह करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़रत और रहमत वाला है। और अगर मियाँ बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह ताला अपनी वुस्सत से हर एक को बेनियाज कर देगा। अल्लाह वुस्सत वाला और हिकमत वाला है। यानी आम हालात में तो घर नहीं तोड़ने, लेकिन अगर कोई दीन का नक्स है, कोई इस अखलाकियात में कमी है, ऐसी चीज़ है कि जिसको अनअवॉइडेबल कहा जा सकता है, तो अल्लाह ने दरवाज़ा वापसी का खोल दिया। फिर ये ना सोचो कि आगे क्या होगा, अब इस बच्ची का आगे क्या होगा, इस मर्द का क्या होगा। याद रखिए, इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ बनाए जाते हैं, अक्सर यूज़ नहीं होते। तलाक इज़ अ इमरजेंसी एग्जिट। इसलिए यहाँ अल्लाह ने ये बात वाजे कर दी कि इसको बिल्कुल इतना ख़राब कह दो कि बेटी शराबी पापी और बुरे से बुरे इंसान के साथ सारी ज़िंदगी गुजार दे, और तुम उसको कहते हो नहीं बेटा इस घर से तेरा जनाजा ही आए। ये दुआ तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये हुक्म नहीं है। आज हमने हिंदुओं से एक जो और चीज़ें ली, उसमें ये कॉन्सेप्ट भी लिया, और ख़ास तौर पर ये तो बताया भी नहीं कि अच्छे बुरे के फ़र्क पे स्टैंड कैसे लेना है। तो बहरहाल इन मौजूआत पे मज़ीद समझने के लिए हमें इंशाल्लाह मज़ीद वक्त चाहिए। अल्लाह करे कि हमारे घरों में अमन और चैन आ जाए। ज़मीन और आसमानों की हर हर चीज़ अल्लाह ही की मलकियत में है, और वाकई हमने इन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए और तुमको भी यही हुक्म किया है कि अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम कुफर करो तो याद रखो कि अल्लाह ताला के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में, और अल्लाह ताला बहुत बेनियाज और तारीफ़ किया गया है। अल्लाह के इख्तियार में आसमानों की सब चीज़ें और ज़मीन की भी, और अल्लाह ताला कारसाज़ काफ़ी है। अगर इसे मंजूर हो तो ऐ लोगो वो तुम सबको ले जाए। देखिए धमकी है बहुत बड़ी कि तुम में से कोई भी अल्लाह की ज़रूरत नहीं हो, तुम सबको ले जाए और दूसरों को ले आए। अल्लाह ताला इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है। जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता हो तो याद रखो कि अल्लाह ताला के पास तो दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और खूब देखने वाला है। क्या पता चला, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए हमें इस बात का यकीन रखना है कि हर काम जो मैं इस दुनिया में करूँगी, मुझे इसका बदला आखिरत में मिलेगा। फिर अमल करना आसान हो जाता है। फिर कोई नेकी करे ना करे, आपकी बला से आप तो करेंगे। फिर यतीमों के साथ इंसाफ का हुक्म है, नेकी और भलाई के काम करने की दावत है, बीवियों के दरमियान अदल करने का हुक्म, और एहसान का मामला करना है और सुलह करना है। आम हालात में इंसान का मिजाज सुलह वाला होना चाहिए, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो फिर बच्चियों को ऐसे ही लटकता हुआ नहीं छोड़ देना चाहिए। आखिरी रुकू है पारे का, रुकू नंबर 17, आयत 135 से 141, अदल और इंसाफ की गवाहियाँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन। ऐ ईमान वालो, अदल और इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और खुशनूदिये मौलाह के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। गो वो खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदारों अजीज़ों के। वो शख्स अगर अमीर हो या फकीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज़्यादा ताल्लुक़ है। इसलिए तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ न छोड़ देना, और अगर तुमने कच बयानी की या पहलू तही की यानी बात को बदला, तो जान लो कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला पर और इसके रसूल पर और इसकी किताब पर जो इसने अपने रसूल पर उतारी है, और इन किताबों पर जो इससे पहले नाजिल फरमाई गई हैं, ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह ताला से और इसके फरिश्तों से और इसकी किताबों से और इसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफर करे, वो तो बहुत बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और फिर गए, फिर ईमान ला कर फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में भड़ गए। पहले तो दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। अल्लाह ताला यकीनन इन्हें न बख्शेगा और न इन्हें राहे हिदायत समझाएगा। मुनाफिकीन को इस अमर को पहुंचा दो कि इनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है, जिनकी हालत ये है। बड़ी अहम आयत है, निफाक का पोल खुल रहा है इन आयत में। आप देखेंगे क्या हालत है निफाक की, यानी निफाक की तरफ ले जाने वाली चीज़ कुफार से दोस्तियाँ। क्या उनको कह दो कौन, जिनकी हालत यह है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं, क्या इनके पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह की है। यकीन है आपको मुझे? हम तो कहते हैं अच्छी गाड़ी में, अच्छे घर में इज्जत है, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो इज्जत होगी, और अच्छे खानों में इज्जत है। नहीं, इन्ना करमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, सब कुछ कीजिए, अच्छे कपड़े भी पहने, अच्छी गाड़ियाँ भी रखें, खाने भी खाएं, लेकिन उसको इज्जत का मेयार ना बनाएं। अल्लाह उसी बंदे के आगे आपको बेइज्जत कर देगा जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया होगा। फिर फरमाया, और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयात के साथ कुफर करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो, तो इस मजमे में इसके साथ ना बैठो जब तक कि वो इसके अलावा और बातें ना करने लगे, वरना तुम भी इस वक्त उन्हीं जैसे हो जाओगे। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकीन को जहन्नुम में जमा करने वाला है। क्या पता चला कि बुरी सोहबत अच्छे अच्छे मुसलमानों को कुफर पे ले आती है। आज भी हमारी बहुत सारी नस्लें बुरी दोस्तियों और बुरे माहौल से बदलती हैं। आप कहते नहीं, मेरे बच्चे का तो कोई दोस्त ही नहीं, तो आपके बच्चों के दोस्त उनके हाथों में गैजेट हैं, आज का गूगल उनका दोस्त है, आज के बड़े बड़े चैनल्स उनके दोस्त हैं। हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखिए। आप मुस्लिम मुल्क में बैठे हैं इसका ये नहीं मतलब कि आपके बच्चे नेक पाक होंगे, बाहर वाले भी बहुत नेक हो जाएंगे अगर सोहबत अच्छी होगी, और यहाँ के भी ख़राब हो सकते हैं। खाना काबा हरम में बैठा हुआ बच्चा भी गलत चीज़ें देखता हुआ पाया गया। असल बात यह है कि सोहबत इंसान के ऊपर बहुत गहरा असर डालती है। ये लोग आपके इंजामे कार का इंतज़ार करते रहते हैं, फिर अगर आपको फतह अल्लाह दे तो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथी नहीं, और अगर काफिरों को थोड़ा सा गलबा मिल जाए तो इनसे कहते हैं क्या हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे, और क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से ना बचाया था। बस क़यामत में खुद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर हरगिज़ राह ना देगा। क्या पता चला कि अगर आप और मैं चाहते हैं कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन में शामिल हों, तो नंबर एक इंसाफ के लम्बरदार बन जाइए, अल्लाह के नाम पर गवाह बनिए, यानी सच्ची गवाहियाँ दीजिए, सच्ची बात कहिए, मुनाफ़िकत की रविश अख्तियार नहीं करनी, इज्जत की तलब में इंसानों के पास नहीं जाना, ईमान के तकाजे पूरे करने हैं, बुरी सोहबत से खुद भी बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। आखिर में आयत नंबर 142 से 147 है, दीन को अल्लाह के लिए खालिस करना। बहुत सुनने वाली आयात हैं, गौर व फिक्र वाली आयात हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी आयात निफाक के दर्जों को बयान करती हैं। इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, बेशक मुनाफिक अल्लाह ताला से चालबाजियां कर रहे हैं। इसको दिल पे लीजिए, और वो इन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला है। और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहली की हालत में खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं, और याद इलाही तो यूं ही सी बराए नाम करते हैं, यानी उनको नमाज में भी अल्लाह याद नहीं आता, फिल्म देखते हुए कहाँ आएगा। वो दरमियान में ही मुअल्लक डगमगा रहे हैं, मुजब्जबी नबई नसालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, न पूरे इनकी तरफ और न सही तौर पर उनकी तरफ, जिसको कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, आधे तीतर आधे बटेर, ना ये मुसलमान रहते हैं ना काफिर होते हैं, ये बीच का एक तीसरा रंग बन जाते हैं। आप देखिए, मीठी चीज़ में नमक डाल दें या नमक की जगह चीनी डाल दें ना, तो कोई एक और ही नया टेस्ट बन जाता है। इस्लाम में कुफर डाल दिया जाए तो निफाक का टेस्ट बन जाता है, जिसका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना कुफर से कोई ताल्लुक है, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही में डाल दे तो तू उसके लिए कोई राह ना पाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बड़ी प्यारी एडवाइस है पारे के आखिर में, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम कर लो, यानी तुम अल्लाह को मौका दे रहे हो कि तुम्हें पकड़ ले इस जुर्म में। मुनाफिक तो यकीनन जहन्नुम के सबसे नीचे के तबके में होंगे, हवा हाविया, जहन्नम के सबसे छोटा आखिरी दर का, दर्जे ऊपर होते हैं ना तो दर के नीचे होते हैं। आपको पता है कि तन्नूर में या अवन में सबसे ज़्यादा आग कहाँ होती है, जो आग के करीब हो नीचे, तो जहन्नम का सबसे निचला तबका उसका नाम है हाविया, हवा से ख्वाहिश परस्त लोग वहाँ मुनाफिक फेंके जाएंगे। अल्लाह हमें निफाक से बचाए, दुरंगेपन से बचाए, कौल व फेल के तजाद से बचाए। नामुमकिन है कि तू इनका कोई मददगार पा ले, यानी निफाक का इतना बुरा अंजाम। काफिरों के लिए नहीं ये बात कही, मुनाफिकों के लिए कही कि सबसे नीचे। अब क्या करें, अब निफाक से निकलने के रास्ते, इल्लल्लज़ीना ताबू, हाँ मगर जो तौबा करें और इस्लाह करें और अल्लाह पर कामिल यकीन रखें और खालिस अल्लाह ही के लिए दीनदारी करें, यानी सच्चे दीनदार बन जाएं। तो ये लोग मोमिनों के साथ हैं, अल्लाह ताला मोमिनों को बहुत बड़ा अजर देगा। और आखिरी आयत में तो शोर को बेदार किया जा रहा है, मा यफ़लुल्लाहु बि अज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें सजा देकर क्या करेगा, इन शकर तुम, ला इन शकर तुम वाली बात को जहन में लाइए, अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो और ईमान वाले बनो, वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है। ऐसे लगता है कि गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तुम सारी जिंदगी अल्लाह ताला का नाम भी लेते रहे और बिलआखिर दर की असफल में पहुंचे, क्या मिला? आप देखिए सारी जिंदगी की नमाजें, इबादतें, चले रोजे, कितने मुश्किल रोजे होते हैं, जिन्होंने ना रखे उनको तो बड़े मुश्किल लगते हैं, जहाँ गर्मी है उधर तो और भी मुश्किल है। और अगर एंड पे पता चला जाए हाँ तुमने रोज़ा तो रखा था लेकिन वो जो निफाक था ना उसकी वजह से सब ज़ाया हो गया, चलो अब दर के असफल में। जितना दुनिया में गुनाहों में इंडल्ज हुए, जितने गुनाहों में डूबे, उतनी गहरी जहन्नुम, ऊपर जहन्नुम में नहीं, इनको नीचे डालो, ज़रा इनको डुबकियाँ दिलाओ, इनका टेम्परेचर 100, 120, 180 नहीं 240 प्लस कर दो। कभी किसी चिकन को आपने ओवन में रोस्ट होते देखा हो तो उसको जहन में लाइए, इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकी असफली मिनन नार। और वजह देखिए बात कहाँ से शुरू हुई थी, बुरी दोस्तियों से। जब दिल से कुफर की मोहब्बत ख़त्म होती है ना तो निफाक आ जाता है। हम कहते क्या है वैलेंटाइन है ना, क्या है क्रिसमस है ना, हज़रत फातिमा बनाती हैं ऐसी चीज़ें। हज़रत फातिमा और अली के दौर में अगर ये नाम होते तो उनका क्या इस पे अमल होता? इस बात पे पारे को पूरा करूंगी कि हम सबको अपनी फिक्र करनी है, कोई अपने आप को पाक ना समझे। उधर तो बड़े बड़े सहाबा, 70 से ज़ायद सहाबा को अपने ऊपर निफाक का अंदेशा था। हज़रत उमर तो हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा करते थे, मेरा नाम तो उस लिस्ट में नहीं जो नबी ने आपको बता दी, और आप में कैसे बच गए, सिर्फ नमाज़ें पढ़ के। और वो नमाज़ों की हालत तो कोई देखे, हमारी हमारी इबादत को तो कोई देखे, हमारी तो नेकियों में भी इतने गुनाह है कि उस पर भी फिर तौबा करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें दुनिया से ले जाने से पहले हर तरह के कौल व फेल के तजाद से भी पाक कर दे, और अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम दुनिया में अपने आप को पाक कर लें इससे पहले कि अल्लाह हमें पाक करे। आप देखिए धब्बा लग जाए ना तो उसको और फ़ौरन धो लें ना तो साफ़ हो जाता है, और अगर थोड़ी देर रख दें तो फिर साबुन लगाना पड़ता है, और थोड़ी देर पड़ा रहे तो ब्लीच, और पक्का दाग हो जाए तो उसको फिर भट्टी में पकाना पड़ता है। तो कुछ लोगों के गुनाह जहन्नम की भट्टियों में जाकर पकाए जाएंगे और उतारे जाएंगे। कोई ऐसे धोखे न रखिए अपने दिल दिमाग में। क्या सीखा? पांचवे पारे में सहाबा कराम मकसद हयात को पा गए और वो कामयाब हो गए। अल्लाह आपको मुझे भी कामयाब कर दे। और जब तक अपना मुहासबा ना करें बात नहीं बनेगी। समझदार है वो शख्स जो अपना मुहासबा करे, आखिरत की बेहतरी के लिए नेकियां करे, और आजिज़ है वो जो अपने नफ्स की लगाम शैतान के हाथ में दे दे, ख्वाहिशात की पैरवी करता फिरे और अल्लाह ताला से आखिरत के इंजाम की उम्मीद रखे। खुद से पूछिए क्या मैंने इंसाफ का झंडा थाम लिया, क्या मैं अल्लाह की बजाय लोगों से इज्जत की ख्वाहिश तो नहीं रखती, क्या मैं अल्लाह की आयात के मुकाबले में गलत तौर तरीक़ों को तो नहीं अपनाती, और क्या मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से मोहब्बत मौजूद है। और जितना ज़्यादा हम अल्लाह ताला से राज़ी होंगे अल्लाह हमसे राज़ी होगा। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिक लिमन खशिया रब्बा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।